गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आशा है आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। मैं आपको पर्यावरण शिक्षा में जलवायु आपदा के अंतर्गत भूकंप के बारे में आज बताती हूँ। भूकंप आपने फील किया होगा कभी या सुना होगा, जानते तो होंगे ही आप। तो भूकंप जब किसी तालाब में कोई पत्थर फेंका जाता है तो चारों दिशाओं की ओर लहरों की एक श्रृंखला आरंभ हो जाती है। उसी प्रकार चट्टानों के आकस्मिक विक्षोभ डिस्टरबेंस जो है उसके द्वारा विक्षेप स्थल से सभी दिशाओं की ओर जो वाइब्रेशन आरंभ हो जाता है, इन कंपनों का संक्रमण ही भूकंप कहलाता है। आगे अब हम देखते हैं मैकलबेन के शब्दों में भूकंप क्या है। भूकंप पृथ्वी के धरातल के कंपन अथवा दोलन है जो भूपृष्ठ या उसके नीचे चट्टानों के प्रत्यास्थ अर्थात लचीलेपन या गुरुत्वीय संतुलन में क्षणिक विक्षोभ द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो ये तो हो गए भूकंप का अर्थ। पृथ्वी के कांपने को भूकंप कहते हैं। भू धनकंप दो शब्दों से मिलकर के ये बना हुआ है। तो जब अर्थक्वेक या भूकंप होता है तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। लोग सोचते हैं कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो आइए देखते हैं हम पर्यावरणिक दृष्टि से कि इस भूकंप के कारण क्या क्या हो सकते हैं, भूकंप की उत्पत्ति के कारण क्या हैं। इसके लिए सबसे पहले आप जानते होंगे कि अरस्तु का नाम सुना है आपने। तो अरस्तु ने जो कि 384 से लेके 322 ईस्वी तक थे, उन्होंने इसका प्रयास किया जानने का। तो अरस्तु के अनुसार भूमिगत हवा बाहर निकलने का जब प्रयास करती है तो वही भूकंप की उत्पत्ति होती है। ये बातें इसके अतिरिक्त हमारे देश में अधिकांश लोगों की कल्पना थी कि पृथ्वी को कोई जीव उठाए हुए है। जैसे कहते हैं हमारे भारत में कि शेषनाग की पीठ पे पृथ्वी टिकी हुई है, उत्तरी अमेरिका में कछुआ पे टिकी हुई है, ईरान में ईरान केकड़ा पे, तिब्बत में मेढक, ये सारी बातें जो है। तो कहते हैं कि वो जीव जब करवट लेता है तो भूकंप होता है। खैर हम देखते हैं कि इन चट्टानों का जो आकस्मिक विक्षोभ होता है इसके कारण क्या क्या से हैं। सबसे पहले देखिए जो सबसे पहला कारण आता है आपका, उसको कहते हैं प्लेट विवर्तनिकी। तो यह एक आधुनिक संकल्पना है। इसके अनुसार जो स्थल मंडल है वो कठोर भूप्लेटों से निर्मित है। ये जो भूप्लेटें होती हैं ये सदैव गतिशील अवस्था में रहती हैं। कहीं दो भूप्लेटें विपरीत दिशा में आ जाती हैं तो कहीं वो परस्पर टकरा जाती हैं। दोनों ही अवस्था में भूकंप की स्थिति हो जाती है। भूप्लेटों की एक तीसरी स्थिति भी होती है जिसमें दो प्लेट एक दूसरे के अगल बगल सरक जाती हैं, जिससे रूपांतर भ्रंश बनता है। इस स्थिति से भी भूकंप पैदा हो जाता है। तो जो भूकंप है इसके समस्त कारण में जो भी जितने भी रीजन हैं पृथ्वी के अंदर ही होते हैं। कालांतर में भूकंप जैसे आकस्मिक घटनाओं के रूप में पृथ्वी के धरातल पर प्रस्फुटन होना माना गया। ऐसी घटनाओं से पृथ्वी में जो कंपन होता है पृथ्वी के गर्भ में तथा पृथ्वी के तल के ऊपर चट्टानों में हलचल का होना बड़ा नुकसान होता है। इससे काफी धन जन की हानि होती है। तो विश्व में प्रतिवर्ष दर्जनों भर भूकंप जैसी क्रियाएं अब होती आ रही हैं। ऐसे अनेक भूकंपीय उदाहरण हैं जिससे अनेक लोगों की जान गई है। जैसे 1970 ईस्वी में पेरू दक्षिणी अफ्रीका का एरिया है ये, इसमें भूकंप जब आया था तो लगभग 200,000 लोग प्रभावित हुए और 67,000 मौतें हुई थी। भारतवर्ष का हिमालयी क्षेत्र और समीपवर्ती मैदानी भाग भूकंप संभावित क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। 1928 का कश्मीर भूकंप, 1933 व 34 का बिहार का भूकंप, 1869, 1887 एवं 1950 का आसाम का भीषण भूकंप। 1993 में महाराष्ट्र के लातूर क्षेत्र में आया हुआ भूकंप, गुजरात का भूकंप, भारत के इतिहास में ये सारी घटनाएं हम बहुत कड़वी यादों के रूप में जानते हैं। बड़ी भयावह घटना ये सब है। भूकंप जो है ये प्राकृतिक आपदाओं में से एक है, जिसका मूल संबंध पृथ्वी के गर्भ में घटित होने वाली विवर्तनिकी घटनाओं से है। विश्व का जो अधिकांश भाग है, जो कि प्रायः कमजोर भूगर्भित चट्टानों से बना हुआ है, भूकंप संभावित क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। ऐसे क्षेत्र जो कि समुद्र तटवर्ती हैं, इसके अंतर्गत प्रशांत महासागरीय एवं अटलांटिक महासागरीय तटीय मेखलाओं के क्षेत्र, इसके अंतर्गत मध्य एशिया की मोड़दार पर्वत श्रृंखलाओं का क्षेत्र, जिसमें भारत, बर्मा, चीन, रूस, यूरोपीय समूह देश के देश में आते हैं। दूसरा नंबर पे आता है भूपटल का सिकुड़ना। मतलब जो भूपटल है वो अपनी आरंभिक अवस्था में जब रहती है, तो उसके बाद जब उसमें सिकुड़न उत्पन्न होती है वो स्थिति, तो हम जानते हैं कि पृथ्वी अपनी आरंभिक अवस्था में बड़ी गर्म थी। ताप के विकिरण के कारण धीरे धीरे इसका बाह्य आवरण ठंडा हुआ। कुछ विद्वानों ने, भूगर्भ वैज्ञानिकों ने तो ये भी कहा है कि रेडियोधर्मी तत्वों के कारण सदैव ताप की अधिकता रहती है, अतः संकुचन की जो कल्पना है वो सच नहीं है, गलत है। भूगर्भ में ठंडे होने की प्रक्रिया आज भी चालू है। ठंडे होने से चट्टाने सिकुड़ती हैं, जिसका प्रभाव भूपटल पर पड़ता है, फलतः भूकंप की उत्पत्ति होती है। और जो ये सिकुड़न है, इसको कुछ विद्वानों ने कहा है कि पर्वत श्रेणियों की उत्पत्ति इससे होती है। तीसरे नंबर पे हम देखते हैं कि भूकंप की उत्पत्ति का कारण क्या है, कि एकत्रित जल का भार। एकत्रित जल का तात्पर्य भारत के कृत्रिम, सॉरी, एकत्रित जल का तात्पर्य जल के कृत्रिम भंडारण से है। इस असंतुलन को दूर करने की जो प्रक्रिया है, इसमें भूकंप होते हैं। भारत के भूकंप रहित क्षेत्र में कोयना बांध के कारण सन 1967 वह 1975 में भूकंपों का प्रादुर्भाव हुआ था। भूपटल पर पाए जाने वाले प्राकृतिक जलाशय जैसे सागर, झील, तालाब आदि समस्थितिक समायोजन की स्थिति में होते हैं, किंतु मानव निर्मित जल के कृत्रिम भंडारण से, जैसे जलाशय व बांध में हम भंडारण करते हैं वो चीज, इससे असंतुलन बिगड़ जाता है, तो वो भूकंप की स्थिति पैदा हो सकती है। आगे बढ़िए। समस्थितिक समायोजन, मतलब जो बहिर्जात शक्तियां हैं धरातल की काट छाट करके इस संतुलन को सदैव नष्ट करने में संलग्न रहती हैं। इस संदर्भ में नदियों का कार्य अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भूपटल पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति जैसे पर्वत, पठार, मैदान, समुद्र, तलहटी इत्यादि के मध्य सदैव संतुलन पाया जाता है। धरातल अपरदित करके नदियां अवसाद को सागर की तलहटी में निरंतर जमा करती रहती हैं। फलतः सागर की जो तलहटी होती है अवसादों के भार के कारण नीचे की ओर धसकती जाती है, खिसकती धसकती धीरे धीरे। पृथ्वी के इस असंतुलन को दूर करने के लिए उच्च स्थलीय भागों का उत्थान होता है। इस प्रकार पृथ्वी पुनः संतुलन स्थापित करती है। समस्थितिक समायोजन यही कहलाता है। इस समायोजन के समय जिन क्षेत्रों में अवतलन एवं उत्थान होता है वहां पे भूकंप आते हैं। अगला कारण हमने आपको बताया है वितलीय कारण। इतनी अधिक गहराई में अत्यधिक भार के कारण चट्टानों का आकस्मिक विभंग संभव नहीं लगता है, ये भूकंप ही अपेक्षाकृत कराते हैं। कुछ विद्वान इन्हें विवर्तनिक भूकंप के अंतर्गत ही रखते हैं, जो वितलीय कारण पृथ्वी की अत्यधिक गहराई से संबंधित होते हैं उससे बड़ा नुकसान होता है। सामान्यतः 250 से 700 किलोमीटर की गहराई में जिन भूकंपों का उद्गम क्षेत्र होता है उन्हें वितलीय भूकंप कहते हैं। अगला देखते हैं अन्य कारण कि भूकंप की उत्पत्ति के और कौन कौन से कारण हो सकते हैं। भूकंपों की उत्पत्ति के उपयुक्त जो कारण हैं, इसके बाद हम आपको अन्य कारण में बताते हैं कि समुद्र तटीय क्षेत्रों में क्लिफ का टूटकर समुद्र में गिरना, हम नदों का टूटना गिरना, पर्वतीय क्षेत्रों में आकस्मिक भूस्खलन, चूने के जो प्रदेश में कंदराओं की छतों का अकस्मात गिरना, तटवर्ती क्षेत्र में सागर की लहरों का तट से टकराना, ये सब इन कारणों से क्षीण भूकंप आते हैं जिनका प्रभाव थोड़ा मोड़ा पड़ता है। अगले नंबर पे हम बढ़ते हैं विवर्तनिका। इन शक्तियों के द्वारा किसी क्षेत्र या उत्थान या अवतलन अथवा वहां की चट्टानों का चटकन या भ्रंशन, संवलन या चलन संभव होता है। इस प्रकार जो विवर्तनिक क्रियाएं होती हैं उनके द्वारा चट्टानों में जो विक्षोभ डिस्टर्बेंस होता है वह भूकंप की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है। भूपटल पर भूकंप की उत्पत्ति का सबसे महत्वपूर्ण कारण विवर्तनिका ही है। इसके अंतर्गत पृथ्वी की सभी आंतरिक शक्तियां समाहित हैं, चाहे वे महाद्वीप निर्माणकारी हों या पर्वत निर्माणकारी, दोनों ही पृथ्वी की चट्टानों में भी विक्षेप पैदा करती हैं। अगली नंबर पे हम आते हैं संख्या पे कि ज्वालामुखी क्रिया। मैंने आपको लिख के भी बता दिया है तो आप उसके देख लीजिएगा कि मैं आपको क्या क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ज्वालामुखी क्रिया की ओर हम बढ़ते हैं। जब ज्वालामुखी का उद्धार होता है तो भूगर्भ का लावा तथा गैसें बाहर निकलने के लिए कठोर भूपटल पर प्रघात करते हैं जिससे भूकंप की उत्पत्ति होती है। इन भूकंपों की तीव्रता ज्वालामुखी उद्धार की तीव्रता पर निर्भर होती है। इसका प्रभाव अपेक्षाकृत सीमित क्षेत्र में ही होता है तथा ज्वालामुखी के निकटवर्ती क्षेत्र में भी इसकी तीव्रता अधिक होती है। जो चट्टाने हैं इनका जब आकस्मिक विक्षोभ होता है तो भूकंप का यह दूसरा प्रमुख कारण हुआ। हालांकि यह क्रिया विवर्तनिका के अंतर्गत ही आती है किंतु <कुछ। coughs>